بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين.
دوسرا باب بچپن ولادت باسعادت. حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی تاریخ پیدائش میں اختلاف ہے، مگر قول مشہور یہی ہے کہ واقعہ اصحاب فیل سے 55 دن کے بعد 12 ربیع الاول مطابق 20 اپریل 571 عیسوی ولادت باسعادت کی تاریخ ہے. اہل مکہ کا بھی اسی پر عمل درآمد ہے کہ وہ لوگ 12 ربیع الاول ہی کو کاشان نبوت کی زیارت کے لیے جاتے ہیں اور وہاں میلاد شریف کی محفلیں منعقد کرتے ہیں. تاریخ عالم میں یہ وہ نرالا اور عظیمت والا دن ہے کہ اسی روز عالم ہستی کے ایجاد کا باعث، گردش لیل و نہار کا مطلوب، خلق کی آدم کا رمز، کشتی نوح کی حفاظت کا راز، بنی ایک کعبہ کی دعا، ابن مریم کی بشارت کا ظہور ہوا، کائنات وجود کے تمام جہاں کے بگڑے نظاموں کو سدھارنے والا، یعنی بار وہ نبیوں میں رحمت اللیل عالمین لقب پانے والا، وہ اپنے پرائے کا غم کھانے والا، مراد غریبوں کی، مصیبت میں غیروں کے کام آنے والا، فقیروں کا مادی، زیفوں کا مالجا، یتیموں کا والی، غلاموں کا مولا، سند الاصفیہ، اشرف الانبیاء، احمد مجتبی، محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم عالم وجود میں رونق افروز ہوئے اور پاکیزہ بدن، ناف بریدہ، ختنہ کیے ہوئے، خوشبو میں بسے ہوئے، بحالت مکہ مکرمہ کی مقدس سرجمی میں اپنے والد ماجد کے مکان کے اندر پیدا ہوئے. باپ کہاں تھے جو بلائے جاتے اور اپنے نور نظر کو دیکھ کر نحال ہوتے؟ وہ تو پہلے ہی انتقال کر چکے تھے. دادا بلائے گئے جو اس وقت طواف کعبہ میں مشغول تھے. یہ خوشخبری سن کر دادا عبد المطلب خوش خوش حرم کعبہ سے اپنے گھر آئے اور والنا جوش محبت میں اپنے پوتے کو کلیجے سے لگا لیا. پھر کعبہ میں لے جا کر خیر او برکت کی دعا مانگی اور محمد نام رکھا. آپ کے چاچا ابو لہب کی لونڈی تواہیبہ یہ خوشی میں دوڑتی ہوئی گئی اور ابو لہب کو بھتیجا پیدا ہونے کی خوشخبری دی، تو اس نے اس خوشی میں شہادت کی انگلی کے اشارے سے تواہیبہ کو آزاد کر دیا، جس کا ثمرہ ابو لہب کو یہ ملا کہ اس کی موت کے بعد اس کے گھر والوں نے اس کو خواب میں دیکھا اور حال پوچھا تو اس نے اپنی انگلی اٹھا کر یہ کہا، تم لوگوں سے جدا ہونے کے بعد مجھے کچھ کھانے پینے کو نہیں ملا. بجائے اس کے کہہ تواہیبہ کو آزاد کرنے کے سبب سے اس انگلی کے ذریعے کچھ پانی پلا دیا جاتا ہے. اس موقع پر حضرت شیخ عبدالحق محدث دہلوی علیہ رحمہ نے ایک بہت ہی فکرنگیز اور بصیرت افروز بات تحریر فرمائی ہے جو اہل محبت کے لیے نہایت ہی است بخش ہے. وہ لکھتے ہیں، اس جگہ میلاد منانے والوں کے لیے ایک سند ہے کہ یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی شب ولادت میں خوشی مناتے ہیں اور اپنا مال خرچ کرتے ہیں. مطلب یہ ہے کہ جب ابو لہب کو جو کافر تھا اور اس کی مذمت میں قرآن شریف نازل ہوا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت پر خوشی منانے اور باندی کا دودھ خرچ کرنے پر جزا دی گئی، تو اس مسلمان کا کیا حال ہوگا جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت میں سرشار ہو کر خوشی مناتا ہے اور اپنا مال خرچ کرتا ہے؟ مولد النبی، جس مقام میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت ہوئے. تاریخ اسلام میں اس مقام کا نام مولد النبی، نبی کی پیدائش کی جگہ ہے. یہ بہت ہی مبارک مقام ہے. سلاطین اسلام نے इस मुबारक यादगार जगह पर बहुत ही शानदार इमारत बना दी थी, जहां अहले हरमायन शरीफेन और तमाम दुनिया से आने वाले मुसलमान दिन रात महफिले मिलाद शरीफ मुनाकिद करते और सलात और सलाम पढ़ते रहते। चुनांचे हजरत शाह वाली उल्लाह साहिब मुहद्दिस दहलवी रहमतुल्लाह अलैह ने अपनी किताब फुयूजुल हरमायन में तहरीर फरमाया है कि मैं एक मर्तबा इस महफिले मिलाद शरीफ में हाजिर हुआ, जो मक्का मुकरमा में 12 रबी उलवल को मौलिदन नबी में मुनाकिद हुए थी। जिस वक्त विलादत का जिक्र पढ़ा जा रहा था, तो मैंने देखा कि इस मजलिस में कुछ अनवार बुलंद हुए। मैंने इन अनवारों पर गौर किया तो मालूम हुआ कि वो रहमते इलाही और उन फरिश्तों के अनवार है जो ऐसी महफिलों में हाजिर हुआ करते हैं। जब हिजाज पर नजदी हुकूमत आए तो मकाबिर जन्नतुल माला ओ जन्नतुल बकी के गुम्बद ओ के साथ साथ नजदी हुकूमत ने इस मुकद्दस यादगार को भी तोड़ फोड़ कर मुस्मार कर दिया और बरसों ये मुबारक मकाम वीरान पड़ा रहा। मगर जब मैं जून 1959 में इस मरकज ए खैर ओ बरकत की जियारत के लिए हाजिर हुआ, तो मैंने इस जगह एक छोटी सी इमारत देखी जो मुकफ्फल थी। अरबों ने बताया कि अब इस इमारत में एक मुख्तसर सी लाइब्रेरी और एक छोटा सा मकतब है। अब इस जगह ना मिलाद शरीफ हो सकता है, ना सलात ओ सलाम पढ़ने की इजाजत है। मैंने अपने साथियों के साथ इमारत से कुछ दूर खड़े होकर चुपके चुपके मिलाद ओ सलाम पढ़ा और मुझ पर ऐसी रिक्कत तारी हुई कि मैं कुछ देर तक रोता रहा। दूध पीने का जमाना। सबसे पहले हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अबू लहब की लौंडी तुवाहिबा का दूध नौश फरमाया, फिर अपनी वालिदा माजिदा हजरत आमिना के दूध से सेराब होते रहे, फिर हजरत हलीमा सादिया आपको अपने साथ ले गई और कबीला बनु साद में रखकर आपको दूध पिलाती रही और उन्हीं के पास आपके दूध पीने का जमाना गुजरा। शरफाए अरब की आदत थी कि वो अपने बच्चों को दूध पिलाने के लिए नवा के देहातों में भेज देते। देहात की साफ सुथरी हवा में बच्चों की तंदुरुस्ती और जिस्मानी सेहत बेहतर हो जाती थी और वो खालिस और फसीह अरबी जुबान भी सीख जाते, क्योंकि शहर की जुबान बाहर के लोगों के मेलजोल से खालिस और फसीह और बलिग जुबान नहीं रहती। हजरत हलीमा रदी अल्लाह ताला अन्हा का बया है कि मैं बनु साद की औरतों के हमराह दूध पीने वाले बच्चों की तलाश में मक्का गई। उस साल अरब में बहुत सख्त कहत पड़ा हुआ था। मेरी गोद में एक बच्चा था, मगर फकरा और फाका की वजह से मेरे स्तनों में इतना दूध नहीं था कि उसको काफी हो सके। रात भर वो बच्चा भूख से तड़पता और रोता बिलबिलाता रहता था और हम उसकी दिलजोई और दिलदारी के लिए तमाम रात जागते रहते। एक ऊंटनी भी हमारे पास थी, मगर उसमें भी दूध ना था। मक्का मुकरमा के सफर में जिस खच्चर पर सवार थी वो भी इतना लाघर था कि काफिले वालों के साथ चल नहीं सकता था। मेरे हमराही भी इससे तंग आ चुके। बड़ी मुश्किल से ये सफर तय हुआ। जब हम मक्का मुकरमा पहुंचे तो हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को लेने वाली कोई भी औरत पेश नहीं आई, क्योंकि आपके यतीम होने की वजह से ज्यादा इनाम और इकराम मिलने की उम्मीद नहीं थी। उधर हजरत हलीमा सादिया की किस्मत का सितारा आसमा से ज्यादा बुलंद और चांद से ज्यादा रोशन था। उनके दूध की कमी उनके लिए रहमत का सबब बन गई, क्योंकि दूध कम देखकर किसी ने उनको अपना बच्चा देना गवारा ना किया। हजरत हलीमा सादिया ने अपने शौहर हारिस बिन अब्दुल उज्जा से कहा कि खाली हाथ लौट जाना ठीक नहीं लगता, बेहतर यह है कि मैं इस यतीम ही को ले चलूं। शोहर ने मंजूर कर लिया और हजरत हलीमा सादिया इस दुरे यतीम को ले आई, जिसके नूर से सिर्फ हलीमा और आमिना का घर नहीं बल्कि पूरे आलम का मशरिक और मगरिब रोशन होने वाला था। ये अल्लाह ताला का फजल अजीम था कि हजरत हलीमा सादिया की सोई हुई किस्मत बेदार हो गई और सरवर ए कायनात उनकी अघोश में आ गए। अपने खेमे में लाकर जब दूध पिलाने बैठी तो बरकाते नबूवत का जुहूर शुरू हो गया। खुदा की शान देखिए कि हजरत हलीमा के मुबारक पस्तान में इतना दूध उतर आया कि रहमते आलम ने भी और उनके रजाए भाई ने भी खूब शैकम से होकर दूध पिया और दोनों आराम से सो गए। उधर ऊंटनी के थन भी दूध से भर गए। हजरत हलीमा के शौहर ने उसका दूध दोहा और दोनों ने खूब शैकम से होकर दूध पिया और दोनों पुरसुकून नींद सोए। हजरत हलीमा का शौहर हुजूर रहमते आलम की ये बरकात देखकर हैरान रह गया और कहने लगा, हलीमा तुम बड़ा ही मुबारक बच्चा लाई हो। हजरत हलीमा ने कहा, मुझे भी यही उम्मीद है कि ये निहायत ही बाबरकत बच्चा है और अल्लाह की रहमत बनकर हमें मिला है और मुझे पूरी तवक्को है कि अब हमारा घर खैर और बरकत से भर जाएगा। हजरत हलीमा फरमाती है कि उसके बाद हम रहमते आलम को अपनी गोद में लेकर मक्का मुकर्रमा से अपने कबीले की तरफ रवाना हुए तो मेरा वही खच्चर इतना तेज चलने लगा के किसी की सवारी उसकी तेजी को नहीं पहुंच सकती थी। काफिले की औरतें हैरा होकर कहने लगे, ए हलीमा, क्या ये वही खच्चर है जिस पर तुम आई थी या कोई नया खरीद लिया है? तो मैंने जवाब दिया, ये वही खच्चर है। घर पहुंचे तो वहां सख्त कहत पड़ा हुआ था। तमाम जानवरों के थन खुश्क हो चुके मगर मेरे घर में कदम रखते ही मेरी बकरियों के थन दूध से भर गए। रोज मेरी बकरियां जब चरागाह से वापस आती तो उनके थन दूध से भरे होते, हालांकि पूरे गांव में किसी को भी एक कतरा दूध नहीं मिलता था। मेरे कबीले वालों ने अपने चरवाहों से कहा कि तुम लोग भी अपने जानवरों को उसी जगह चराओ जहां हलीमा के जानवर चरते हैं, लेकिन यहां तो चरागाह या जंगल का कोई अमल दखल ही नहीं था। ये तो रहमते आलम के बरकाते नबुवत का फैज था जिसे मैं और मेरा शौहर ही समझ सकते। गजब का हाल था, हर वक्त हम आपकी बरकत का मुशाहिदा करते रहे, यहां तक के 2 साल पूरे हो गए और मैंने आपका दूध छुड़ा दिया। आपकी तंदुरुस्ती और नशोनुमा का हाल दूसरे बच्चों से इतना बेहतर था कि 2 साल में आप बिल्कुल बड़े नजर आने लगे। अब हम दस्तूर के मुताबिक रहमते आलम को उनकी वालिदा के पास लाए और उन्होंने हमको इनाम ओ इकराम से नवाजा। कैदान अब हमें हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को अपने पास रखने का हक नहीं था, मगर बरकाते नबूवत के सबब एक लम्हा के लिए भी आपकी जुदाई गवारा ना थी। अजीब इत्तेफाक के इस साल मक्का में बीमारी फैली हुई थी। हमने इस बीमारी का बहाना करके हजरत बीबी आमिना को राजी कर लिया और फिर रहमते आलम को वापस ले आए और हमारा घर बरकत का मरकज बन गया। आप हमारे पास निहायत खुश और खुर्रम होकर रहने लगे। घर से बाहर निकलते और दूसरे बच्चों को खेलते देखते मगर खुद कभी किसी खेल में हिस्सा नहीं लेते। एक रोज मुझसे कहने लगे, अम्मी जान, मेरे दूसरे भाई दिन भर नजर नहीं आते, ये लोग रोज सुबह उठकर कहां चले जाते हैं? मैंने कहा, ये लोग बकरियां चराने चले जाते हैं। ये सुनकर आपने फरमाया, मादरे मेहरबान, आप मुझे भी उनके साथ भेज दीजिए। चुनांचे आपके इसरार पर आपको हजरत हलीमा ने अपने बच्चों के साथ चरागाह जाने की इजाजत दे दी। आप रोज उन्हीं जगहों पर जाते जहां हजरत हलीमा की बकरियां चरती थी और उनकी निगरानी फरमाते। बकरियां चराना जो तमाम अंबिया और रसूलों की सुन्नत है, आपने अपने अमल से बचपन ही में अपनी नबूवत की खुसूसियात का इजहार फरमा दिया। शिक्षादर, एक दिन आप चरगाह में थे कि एक दम हजरत हलीमा के एक परजंद जुमराह दौड़ते हाँपते कांपते हुए अपने घर पर आए और अपनी माँ हजरत बीबी हलीमा से कहा कि अम्मा जान, बड़ा गजब हो गया, मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को 3 आदमियों ने जो बहुत ही सफेद लिबास पहने हुए चित लेता कर उनका शिकम फाड़ डाला है और मैं इस हाल में उनको छोड़कर भागा हुआ आया हूँ। ये सुनकर हजरत हलीमा और उनके शौहर दोनों बढ़ावास होकर घबराए हुए दौड़ते हुए जंगल में पहुंचे तो ये देखा कि आप बैठे हुए हैं मगर खौफ ओ हरास से चेहरा जर्दा और उदास है। हजरत हलीमा ने इंतहाई मुशफिकाना लहजे में प्यार से चूम कर पूछा, बेटा क्या बात है? आपने फरमाया, 3 शख्स जिनके कपड़े बहुत ही सफेद और साफ सुथरे थे मेरे पास आए और मुझको चित लेता कर मेरा शिकम चाक करके उसमें से कोई चीज निकाल कर बाहर फेंक दी और फिर कोई चीज मेरी शिकम में डालकर शगाव को सी दिया, लेकिन मुझे जरा बराबर भी कोई तकलीफ नहीं हुई। ये वाकिया सुनकर हजरत हलीमा और उनके शौहर दोनों बेहद घबराए और शौहर ने कहा, हलीमा मुझे डर है कि इनके ऊपर शायद कुछ आसीब का असर है, लिहाजा बहुत जल्द तुम इनको उनके घर वालों के पास छोड़ाओ। इसके बाद हजरत हलीमा आपको लेकर मक्का मुकरमा आई, क्योंकि उन्हें इस वाकिया से ये खौफ पैदा हो गया था कि शायद अब हम कमा हक हो इनकी हिफाजत नहीं कर सकेंगे। हजरत हलीमा ने जब मक्का पहुंचाकर आपको आपकी वालिदा माजिदा के हवाले किया तो उन्होंने दरियाफ्त किया, हलीमा तुम तो बड़ी ख्वाहिश और चाह के साथ मेरे बच्चे को अपने घर ले गई थी, फिर इस कदर जल्द वापस ले आने की वजह क्या है? हजरत हलीमा ने शिकम चाक करने का वाकिया बयां किया और आसिब का शुभ जाहिर किया तो हजरत बीबी आमिना ने फरमाया, हरगिज नहीं, खुदा की कसम मेरे नूरे नजर पर हरगिज हरगिज कभी भी किसी जिन या शैतान का अमल दखल नहीं हो सकता। मेरे बेटे की बड़ी शान है, फिर आयामी हमल और वक्ते विलादत के हैरत अंगेज वाकियात सुनाकर हजरत हलीमा को मुतमईन कर दिया और हजरत हलीमा आपको आपकी वालिदा माजिदा के हवाले करके अपने गांव वापस चली आई और आप अपनी वालिदा माजिदा की आगोशे तरबियत में परवरिश पाने लगे। बचपन की अदाए हजरत हलीमा का बया है कि आपका गहवारा यानी झूला फरिश्तों के हिलाने से हिलता था और आप बचपन में चांद की तरफ उंगली उठाकर इशारा फरमाते तो चांद आपकी उंगली के इशारों पर हरकत करता था। जब आपकी जबान खुली तो सबसे अव्वल जो कलाम आपकी जबान मुबारक से निकला वो ये था,
अल्लाहु अकबर अल्लाहु अकबर अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन व सुभान अल्लाह बकरा व असीला।
बच्चों की आदत के मुताबिक कभी भी आपने कपड़ों में बोल ओ बेजार नहीं फरमाया, बल्कि हमेशा एक मुअय्यन वक्त पर रफा फरमाते। अगर कभी आपकी शर्मगाह खुल जाती तो आप रो रो कर फरियाद करते और जब तक शर्मगाह ना छुप जाती आपको चैन और करार नहीं आता था, और अगर शर्मगाह छुपाने में मुझसे ताखिर हो जाती तो गैप से कोई आपकी शर्मगाह छुपा देता। जब आप अपने खेलकूद पांव पर चलने के काबिल हुए तो बाहर निकलकर बच्चों को खेलते हुए देखते मगर खुद खेलकूद में शरीक नहीं होते, बल्कि बच्चे आपको खेलने के लिए बुलाते तो आप फरमाते के मैं खेलने के लिए नहीं पैदा किया गया हूं। हजरत आमिना की वफात, हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की उम्र शरीफ जब 6 साल के हो गई तो आपकी वालिदा माजिदा आपको साथ लेकर मदीना आपके दादा के नहाल बनू आदि बिन नज्जार में रिश्तेदारों की मुलाकात या अपने शोहर की कब्र की जियारत के लिए तशरीफ ले गई। हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के वालिद माजिद की बांदी उम्मे एमम भी इस सफर में आपके साथ थी। वहां से वापसी पर अबवा नामी गांव में हजरत बीबी आमिना की वफात हो गई और उनकी तदफीन वही की गई। वालिद माजिद का साया तो विलादत से पहले ही उठ चुका था, अब वालिदा माजिदा की आगोशे शफकत का भी खात्मा हो गया, लेकिन हजरत बीबी आमिना का दुरे यतीम जिस आगोश रहमत में परवरिश पाकर परवान चढ़ने वाला है वो इन सब जाहिरी असबाब तरबियत से भी नियाज है। हजरत बीबी आमिना की वफात के बाद हजरत उम्मे एमन आपको मक्का मुकरमा लाई और आपके दादा अब्दुल मुत्तलिब के हवाले किया और दादा ने आपकी अपनी आगोश तरबियत में इंतहाई शफकत और मोहब्बत के साथ परवरिश की और हजरत उम्मे एमन आपकी खिदमत करती रही। जब आपकी उम्र शरीफ 8 बरस की हो गई तो आपके दादा अब्दुल मुत्तलिब का भी इंतकाल हो गया। अबू तालिब के पास अब्दुल मुत्तलिब की वफात के बाद आपके चाचा अबू तालिब ने आपको अपनी तरबियत में ले लिया और हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की नेक खिसलतों और दिल लुभा देने वाली बचपन की प्यारी प्यारी अदायों ने अबू तालिब को आपका ऐसा गर्विदा बना दिया कि मकान के अंदर हो या बाहर हर वक्त आपको अपने साथ ही रखते अपने साथ खिलाते पिलाते, अपने पास ही आपका बिस्तर बिछाते और एक लम्हे के लिए भी अपनी नजरों से ओझल नहीं होने देते थे। अबू तालिब का बयान है कि मैंने कभी भी नहीं देखा कि हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने किसी वक्त भी कोई झूठ बोला हो, या कभी किसी को धोखा दिया हो, या कभी किसी को कोई अजार पहुंचाई हो, या बेहुदा लड़कों के पास खेलने के लिए गए हो, या कभी कोई खिलाफ तहजीब बात की हो। हमेशा इंतहाई खुश अखलाक, नेक अतवार, नर्म गुफ्तार, बुलंद किरदार और आला दर्जे के पारसा और परहेजगार रहे। आपकी दुआ से बारिश। एक मर्तबा मुल्क अरब में इंतहाई खौफनाक कहत पड़ गया। अहले मक्का ने बूतों से फरियाद करने का इरादा किया, मगर एक हसीन और जमील बूढ़े ने मक्का वालों से कहा, ए अहले मक्का, हमारे अंदर अबू तालिब मौजूद है जो बनिए काबा हजरत इब्राहिम खलीलुल्लाह की नस्ल से है और काबा के मुतवल्ली और सज्जादा नशीन भी है। हमें उनके पास जाकर दुआ की दरख्वास्त करनी चाहिए। चुनांचे सरदराने अरब अबू तालिब की खिदमत में हाजिर हुए और फरियाद करने लगे, ए अबू तालिब, कहत की आग ने सारे अरब को झुलसा कर रख दिया है। जानवर घास और पानी के लिए तरस रहे हैं और इंसान दाना पानी न मिलने से तड़प तड़प कर दम तोड़ रहे हैं। काफलों की आमद और राफ्ट बंद हो चुकी है और हर तरफ बर्बादी और वीरानी छाई हुई है। आप बारिश के लिए दुआ कीजिए। अहले अरब की फरियाद सुनकर अबू तालिब का दिल भराया और हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को अपने साथ लेकर हरमे काबा में गए और हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को दीवारे काबा से टेक लगाकर बिठा दिया और खुद दुआ मांगने में मशगूल हो गए। दरमियान ए दुआ हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपनी अंगुष्ठी मुबारक को आसमान की तरफ उठा दिया। एकदम चारों तरफ से बदलियां नमूदार हो गई और फौरन ही उस जोर की बारिश ए रहमत बरसने लगी कि अरब की जमीन सैराब हो गई। जंगलों और मैदानों में हर तरफ पानी ही पानी नजर आने लगा। चीला मैदानों की जमीनें सरसब्ज ओ शादाब हो गई। कहत दफा हो गया, काल कट गया और सारा अरब खुशहाल और निहाल हो गया। चुनांचे अबू तालिब ने अपने इस तवील कसीदा में, जिसे उन्होंने हुजूर अकदस सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मदह में नज्म किया है, इस वाकी को एक शेर में इस तरह बयान किया।
وبيض يستسقى العمام بوجهه ثمال اليتامى عصمة للا دامل.
ترجمہ، یعنی وہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم ایسے گوری رنگ والے ہیں کہ ان کے روکھے انور کے ذریعے سے بارش مانگی جاتی ہے، وہ کا ٹھکانہ اور بیواؤں کے نگہبان ہے۔ امی لقب، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا لقب उम्मी है। इस लफ्ज के दो मायने हैं, या तो ये उम्मुल कुर्रा की तरफ निस्बत है, उम्मुल कुर्रा मक्का मुकरमा का लकब है, लिहाजा उम्मी के मायने हुए मक्का मुकरमा के रहने वाले, या उम्मी के ये मायने है कि आपने दुनिया में किसी इंसान से लिखना पढ़ना नहीं सीखा। ये हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का बहुत ही अजीम ओ शान मोजज़ा है कि दुनिया में किसी ने भी आपको नहीं पढ़ाया लिखाया, मगर अल्लाह ताला ने आपको इस कदर इल्म अता फरमाया कि आपका सीना अव्वालीन ओ आखिरीन के उलूम और मारिफ का खजाना बनाया गया और आप पर ऐसी किताब नाजिल हुए जिसके शान है हर चीज का रोशन बयान। हजरत मौलाना जामी रहमतुल्लाह ताला अलैह ने क्या खूब फरमाया, मेरे महबूब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ना कभी मकतब गए ना लिखना सीखा, मगर अपनी आंखों ओ आबरू के इशारे से 100 मदरसों को सबक सिखा दिया। जाहिरी बात है कि जिसका उस्ताद और तालीम देने वाला खाली के आलम जल्ला जलालहु हो, उसको किसी दूसरे उस्ताद से तालीम हासिल करने की क्या जरूरत हो सकती है। आला हजरत फाजिल ए बरेलवी ने इरशाद फरमाया, ऐसा उम्मीद किस लिए मुंतकाश उस्ताद हो, क्या किफायत उसको इकरा रब्बू कल अक्रम नहीं। आपके उम्मी लकब होने का हकीकी राज क्या है, इसे तो अल्लाह ताला के सिवा और कौन जान सकता है, मगर बस जाहिर इसमें चंद हिकमते और फावाइद मालूम होते हैं। अव्वल ये के तमाम दुनिया को इल्म ओ हिकमत सिखाने वाले हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हो और आपका उस्ताद सिर्फ खुदा ही हो। कोई इंसान आपका उस्ताद नहीं हो, ताकि कोई ये ना कह सके कि पैगंबर तो मेरा पढ़ाया हुआ शागिर्द है। दोवम, ये कि कोई शख्स कभी ये ख्याल ना कर सके कि फला आदमी हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का उस्ताद था, तो शायद वो हुजूर से ज्यादा इल्म वाला होगा। सोवम, ये कि हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बारे में कोई ये वहम भी नहीं कर सके कि आपने कुरान की आयात खुद से लिख कर बनाई है, इसलिए कि आप पढ़ लिख सकते हैं। नहीं, कुरान किसी और का नहीं, अल्लाह का कलाम है। चारुम, जब हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सारी दुनिया को किताब और हिकमत की तालीम दे, तो कोई ये ना कह सके कि आपने पहले किताबों को देखकर इन अनमोल और इंकलाब आफरी तालीमात को दुनिया के सामने पेश किया है। पंजुम, अगर हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का कोई उस्ताद होता तो आपको उसकी ताजीम करनी पड़ती, हालांकि हुजूर के इल्म को खाली के कायनात ने इसलिए पैदा फरमाया कि सारा आलम आपकी ताजीम करे, इसलिए अल्लाह ने इसे गवारा ना फरमाया कि मेरा महबूब किसी के आगे जानू तलमुस्तह करे और कोई उसका उस्ताद हो। वल्लाहु ताला आलम। सफर शाम और बहिरा। जब हुजूर करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की उम्र शरीफ 12 बरस की हुई तो अबू तालिब ने तिजारत की घर से मुल्क शाम का सफर किया। अबू तालिब को चुनांचे हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से बहुत ही वालहाना मोहब्बत थी, इसलिए वो आपको भी इस सफर में अपने साथ ले गए। हुजूर अकदस सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ऐलान नबूवत से पहले 3 मर्तबा तिजारती सफर फरमाया, 2 मर्तबा मुल्के शाम गए और 1 मर्तबा यमन तशरीफ ले गए। ये मुल्के शाम का पहला सफर था। इस सफर के दौरान बसरा में बहिरा राहिब के पास आपका कयाम हुआ। उसने तौरात और इंजील में बयान की गई नबी आखिर उज़्ज़मा की निशानियों से आपको देखते ही पहचान लिया और बहुत अकीदत और एहतराम के साथ उसने आपके काफिला वालों की दावत की और अबू तालिब से कहा कि ये सारे जहां के सरदार और रब्बुल आलमीन के रसूल हैं, जिन्हें खुदा ने रहमत अलील आलमीन बनाकर भेजा है। मैंने देखा कि शजर ओ हजार उनको सजदा करते हैं और बादल उन पर साया करता है और उनके दोनों कंधों के दरमिया मोहरे नबूवत है, इसलिए तुम्हारे और इनके हक में यही बेहतर होगा कि अब तुम इनको लेकर आगे ना जाओ और अपना माले तिजारत यही फरोख्त करके बहुत जल्द मक्का चले जाओ, क्योंकि मुल्के शाम में यहूदी लोग इनके बड़े दुश्मन हैं, वहां पहुंचते ही वो लोग इनको शहीद कर देंगे। बहिरा राहिब के कहने से अबू तालिब को खतरा महसूस होने लगा, चुनांचे उन्होंने वही अपना तिजारत का माल फरोख्त कर दिया और बहुत जल्द हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को अपने साथ लेकर मक्का मुकर्रमा वापस आ गए। बहिरा राहिब ने चलते वक्त इंतहाई अकीदत के साथ आपको सफर का कुछ तोशा भी दिया।